आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्लास 10th के साइंस का 7th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ चुके हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नहीं, ये हम चेक करते हैं ये देख करके कि उसमें कोई मूवमेंट शो हो रही है या नहीं। फिर हमने बात की थी कि मूवमेंट क्यों शो हो रही है। मूवमेंट इसलिए शो हो रही है क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म्स चल रहे हैं तो उसकी वजह से मूवमेंट शो हो रही है। उसके बाद हमने बात की थी कि अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर तो हम श्योरली कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव है, क्योंकि बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कब होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। और केमिकल रिएक्शन कब हो रही होती है, जब कोई लाइफ प्रोसेस फंक्शन कर रहा होता है। सच एज रेस्पिरेशन की अगर एग्जाम्पल लें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और उससे क्या मिलती है, एनर्जी जो मिलती है उसको स्टोर किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। तो ब्रेकडाउन करवाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो हम सांस लेकर के अपनी बॉडी में एंटर कराते हैं। तो मूवमेंट शो कर रहे हैं सांस लेने का, सांस छोड़ने का, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस करवानी है। वहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा के कंप्लीट रेस्पिरेशन करवा करके हमें क्या करना है, एनर्जी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन करवानी है। और जब भी केमिकल रिएक्शन होगी बॉडी के अंदर तो पक्का समझ लो कि कोई लाइफ प्रोसेस चल रही है। और अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ प्रोसेस चल रही है तो ऑब्वियसली वो अलाइव है। उसके बाद हमने बात की थी कि ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये क्यों होती है, इसलिए होती है कि इन्वायरमेंट में जो बदलाव आते हैं उससे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म फायदा उठाना चाहता है। जो भी फायदा उसको उठाना है वो उठाने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए उस चीज का, जो बदलाव आ रहा है एनवायरनमेंट में उसका एडवांटेज लेने के लिए बॉडी मूवमेंट शो करती है। अब ये एडवांटेज किसी भी तरीके की हो सकती है, प्रोटेक्शन के लिए हो सकती है या फिर खाना डाइजेस्ट करने के लिए उसको चबाना, ये भी एक तरीके का एडवांटेज लेना है कि खाना को अगर अच्छे से डाइजेस्ट करना है तो उसे अच्छे से चबाना होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स जो है वो च्यू करते हैं, जैसे कि काउज वगैरह आपने देखी होंगी, वो चबाते रहते हैं अपने खाने की चीज़ों को क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो मूवमेंट शो करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव आए हैं और उनको उसका फ़ायदा उठाना है। अब इन्वायरमेंट के अंदर बदलाव आए हैं ये हमारी बॉडी पता कैसे लगाती है, वो पता ऐसे लगाती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं और रिसेप्टर्स से सिग्नल का ट्रैवल करना, ब्रेन तक पहुँचना, ब्रेन से अप्रोप्रिएट फंक्शन जो है, अकॉर्डिंग फंक्शन अकॉर्डिंगली जो मूवमेंट कराना है उसका सिग्नल वापस से उस जगह पर पहुंचना, आपके मसल्स तक पहुंचना, हाथ पैर तक पहुंचना कि भागना है या फिर टच जो कर रहे हैं हाथ रिमूव करना है, ये सारे सिग्नल पहुंचना, ये कैसे होता है, ये नर्वस सिस्टम की मदद से होता है। हमारी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी कह सकते हैं या फिर नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है, नर्व सेल्स जो है, उनके इंटरकनेक्शन की वजह से बन रहा है, एक नेटवर्क बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, एक जाल सा बना हुआ है न्यूरॉन्स का। और ये जो जाल है, पूरा का पूरा जाल ही इकट्ठा एक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो हमने बात की थी अगर मान लो आप कोई गर्म चीज टच करते तो उसका सिग्नल जो है वो थर्मोरिसेप्टर्स की मदद से, डेंड्राइट्स की मदद से आपके नर्व सेल में पहुंचती है, नर्व सेल से पहुंचती है, जब डेंड्राइट्स की मदद से वो ट्रैवल करती है एक्सॉन बॉडी में, एक्सॉन बॉडी से एक्सॉन में जाती है, एक्सॉन से जाकर के नर्व एंडिंग्स में पहुंचती है। जब नर्व एंडिंग्स में पहुंचती है तो वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो नर्व के एक्सॉन में ट्रैवल कर रही थी वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल सिग्नल। और ये केमिकल सिग्नल जो है वो होने के लिए केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है विच इज न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि न्यूरॉन की जो एंडिंग्स है वहां पर केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, एक सेल जो है न्यूरॉन का उससे बाहर निकल करके दूसरे सेल में एंटर करते हैं न्यूरॉन के डेंड्राइट के थ्रू। तो यहाँ पर वो गैप जहाँ पर एक एग्जॉन और दूसरा एग्जॉन आपस में जुड़े हुए हों, एक नर्व सेल और दूसरा नर्व सेल आपस में जुड़े हुए हों, एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए हों, उसे क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। तो साइनैप्स क्या होता है, बेसिकली एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन का जंक्शन। और ये जो जंक्शन होता है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि दोनों आपस में चिपके हुए हैं, दोनों न्यूरॉन्स आपस में चिपके हैं, ये आवश्यक नहीं है। वहां पर एक गैप होता है, उस गैप के अंदर से पहला वाला न्यूरॉन में से न्यूरोट्रांसमीटर निकल करके दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में चले जाते हैं और सिग्नल ट्रैवल जो करता है डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, उसके बाद नर्व एंडिंग, इस तरीके से ट्रैवल करता जाता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू दी अदर न्यूरॉन। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। नोज के अंदर अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, टंग के अंदर गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर का रिडक्शन करें वहाँ पर थर्मो रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स हैं। तो अलग अलग रिसेप्टर्स हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और ये कहाँ लेकर के जाते हैं, ब्रेन तक लेकर के जाते हैं। तो एक नेटवर्क तो बना होता है जो सिग्नल को लेकर के जाता है ब्रेन तक, और दूसरा जो नेटवर्क बना होता है वो ब्रेन से बॉडी तक लेकर के जाने वाला एक और नेटवर्क बना होता है। और वहां पर क्या होता है, वहां पर सिग्नल को मसल्स तक यानी कि हाथ पैर तक पहुंचाया जाता है और बताया जाता है कि बॉडी को रिमूव कर लेना है अगर कोई गर्म चीज आप छू रहे हैं तो। तो इस तरीके से हमने बात की थी कि एक जनरल कंडक्शन किस तरीके से होता है हमारी बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर। और अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर आप लोगों को, जो पेज नंबर 115 पर डायग्राम्स जो दिए हैं अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। आप लोगों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, डायग्राम बनाने के लिए बोला जा सकता है, साथ में जंक्शन का डायग्राम भी बनाने के लिए बोला जा सकता है, साथ में कुछ चीज़ें भी लिखने के लिए बोली जा सकती हैं इनके एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो सभी चीज़ें आप लोगों को करनी है और डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर लिया था, अब हम आज की क्लास में बात करेंगे। आज का टॉपिक है व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, पहले तो उसके हमें ये जानना है कि रिफ्लेक्स क्या होता है। रिफ्लेक्स वर्ड हम कॉमनली तब यूज करते हैं जब हम बात करें किसी सडन एक्शन की इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट में कुछ हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है जिसको देख करके बॉडी में जो सडन रिस्पॉन्स होती है, सडन मूवमेंट होती है, सडन एक्शन जो होती है, अचानक से जो काम किया जाए एनवायरमेंट में बदलाव को देख करके, उसे रिफ्लेक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, मैं बस से कूद गई रिफ्लेक्सली, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से मैं कूद गई, मतलब मैं अचानक से बस से कूद गई, कुछ हुआ होगा बस के अंदर ऐसा, तो बस के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अचानक से मैं बस से कूद गई, तो सडन एक्शन है, अचानक से कूद गए। तो इसलिए रिफ्लेक्स जो वर्ड है वो यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब अ सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो बदलाव आया है, कुछ भी बदलाव आया हो सकता है, उस बदलाव के होने की वजह से अचानक से जो बॉडी ने एक्शन किया है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम मान के चलते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन जब व्यक्ति ने किया है वो इतना सडन है, इतना जल्दी किया गया है कि उसने सोचा ही नहीं होगा, उसने बगैर सोचे जो अचानक से रिस्पॉन्स होता है किसी का भी, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब कि वहां पर बॉडी को थिंक करने का टाइम नहीं मिले, इतना भी टाइम नहीं मिले कि वो सोच पाए कि वो क्या कर रहा है, क्या बदलाव आया है, तो उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जब एकदम ही अचानक हुआ हो। अब आप सोचेंगे कि हमने जो एक्शन किया है वो रिफ्लेक्स एक्शन है, इसका मतलब हमने इतना जल्दी किया है, इतना अचानक से किया है कि हमें सोचने का भी वक्त नहीं मिला है। अगर हमें सोचने का वक्त नहीं मिला है लेकिन हम ये जो एक्शन कर रहे हैं ये तो हम तभी कर रहे हैं जब एनवायरमेंट में कोई बदलाव आया है। तो अगर एनवायरमेंट में बदलाव के बारे में हमने सोचा ही नहीं है तो हमने ये एक्शन कैसे किया, ऐसे कैसे इस सिचुएशन में कैसे हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम जो है वो कैसे फंक्शन करता है। तो इसे आप लोग एक एग्जांपल से समझिए। जब हम लोग एग्जांपल ले रहे थे कि कोई गर्म चीज़ है उसे हमने टच कर दिया, मान लीजिए बहुत ही गर्म कोई चाय की केतली है, उस पर हमारा हाथ लग गया, हमने उसे टच कर लिया। अब मान लो कि अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जो कोऑर्डिनेशन का मूवमेंट है उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो डिटेक्ट किया जाएगा कि गर्म चीज़ है कोई। अब वो सिग्नल जो है वो कहाँ जाएगी, वो ट्रैवल करती हुई नर्व सेल से ट्रैवल करते करते वो ब्रेन तक पहुंचेगी। ब्रेन तक वो पहुंच गई, उसके बाद क्या, वो ब्रेन ने सोचा कि ये गर्म चीज है, इससे नुकसान हो सकता है। उसके बाद ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने सिग्नल बनाया और उसने दूसरे न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क है वहां से सिग्नल को भेजा गया कि इससे नुकसान हो सकता है। अब आप सोचो कि इतने में तो कितना नुकसान ऑलरेडी हो सकता है, जब आप उसे छू रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे नुकसान हो सकता है, इससे नुकसान हो सकता है, तो उतनी देर में तो काफी हद तक, तब तक तो काफी हाथ जल चुका होगा। जब तक आप सोच रहे होंगे कि आपको इससे नुकसान हो सकता है, आपको जल जाएगा हाथ, आपको दर्द होगा, ये जब तक आप सोच रहे हैं उस वक्त तक आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। जब आपका सोचने का प्रोसेस खत्म हो गया उसके बाद आपने रिस्पॉन्स किया, तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि किसी व्यक्ति को कितनी देर लगती है सोचने में, तो वो तो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो कितना सोचने में समय लगाते हैं। अब मान लो कि ऐसे ही ट्रेवल कर रहे हैं, जो हमारा एक्शन है, जो स्टिमुलस है, जो भी सिग्नल है, वो ऐसे ही ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि पहले डिटेक्शन हुआ सिग्नल का, टच किया है, गर्म चीज को टच किया है, तो वो सिग्नल के रूप में ट्रेवल किया नर्व से, और उसके बाद अब थिंकिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो थिंकिंग का प्रोसेस होने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो थिंकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जो फोरहेड वाला पार्ट होता है, वहां पर थिंकिंग का प्रोसेस चलता है, और वहां पर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, वहां पर जो है थिंकिंग का प्रोसेस होता है। और थिंकिंग भी कैसे होती है, वहां पर सिग्नल के रूप में होती है। सो थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, बहुत ही उलझी हुई एक्टिविटी है। जब ये एक्टिविटी ही उलझी हुई है, कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को होने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड न्यूरॉन्स के अंदर इंटरेक्शन होता है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन हो रहा होता है न्यूरॉन्स के अंदर। तो थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, जो कैसे हो रही है, बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस की, अलग अलग न्यूरॉन्स से जो नर्व इम्पल्सेस आ रही हैं, जो सिग्नल्स आ रही है, उनकी एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से, एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन की वजह से थिंकिंग की एक्टिविटी होती है। अब ये थिंकिंग की एक्टिविटी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इंटरेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है नर्व इम्पल्सेस का इन न्यूरॉन्स के अंदर में, तो ये जो एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि वो जो टिश्यूज इन्वॉल्व हैं थिंकिंग की एक्टिविटी करने के लिए, वो बहुत सारे न्यूरॉन्स से बनी है, न्यूरॉन्स की बहुत सारे नेटवर्क जो बनी है, बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता होगा, और उसके बाद वहां पर थिंकिंग की एक्टिविटी होती है। तो थिंकिंग की एक्टिविटी होने के लिए बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनता है, जो कि हमारे स्कल के फोरहेड वाला जो पार्ट होता है वहां पर बनता है। अब स्कल के जो फोरहेड वाला पार्ट है, वहां पर थिंकिंग की एक्टिविटी होती है, वहां पर क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क, बहुत सारा नेटवर्क उससे जुड़ता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं, तो वो सारे के सिग्नल कहाँ आने हैं, थिंकिंग की एक्टिविटी जहाँ हो रही है फोरहेड में, वहां पर आने हैं। तो इसीलिए बहुत सारे न्यूरॉन्स का अलग अलग नेटवर्क बन करके वो सारा का सारा कहाँ पहुँचता है, हमारे ब्रेन के फोरहेड वाले पार्ट में, जहाँ पर थिंकिंग की एक्टिविटी हो रही है वहां पर पहुँचता है। अब वहां पर थिंकिंग की एक्टिविटी हो गई, उसके बाद रिस्पॉन्स सोच लिया गया, तो रिस्पॉन्स को ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भी पहुँचाना है, इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है मसल्स को मूव करने के लिए। तो कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी होने चाहिए जो सिग्नल को वापस लेकर के जाएं उसी मसल के पार्ट पर जहां से रिसीव हुआ है सिग्नल, तो उसको मूव करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बताया जाएगा कि बॉडी को मूव करना है। अब ये सब जो प्रोसेस हो रहा है, ये तब तक हो रहा है जब तक हमने अभी तक भी टच किया हुआ है उस गर्म चाय की केतली को, आपने अभी तक भी टच किया हुआ है, और आपके ब्रेन में पहले सिग्नल पहुंचा, फिर आपके ब्रेन के अंदर थिंकिंग की एक्टिविटी हुई, थिंकिंग की एक्टिविटी होने के बाद में वो सिग्नल जो है वो ट्रैवल किया, आपके हाथ तक पहुंचा, और उसके बाद आपने हाथ हटाया, जब तक आप हाथ हटाते तब तक आपने हाथ लगा करके रखा हुआ था, तो तब तक तो आपका हाथ जल चुका होगा, तो इसमें तो काफी नुकसान हो जाएगा। तो इसको, इस कठिनाई को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बॉडी के अंदर कुछ अलग तरीका होता है, जहां पर हमें थिंकिंग नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई इमीडिएट काम है, कोई इमीडिएट परेशानी आई है, तो उसके लिए थिंकिंग की आवश्यकता नहीं होती है, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन सच सिचुएशंस। यहाँ पर एक अलग तरीका अपनाया जाता है। अब आप सोचो कि बजाय कि ऐसा हो कि हम पहले टच करें, फिर हमारा ब्रेन थिंक कर रहा है, फिर सिग्नल भेज रहा है, फिर हम रिस्पॉन्ड करें, इसके बजाय अगर ऐसा होता कि वो नर्व्स जो डिटेक्ट कर रहे हैं चेंज को, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है, ये नर्व्स ने डिटेक्ट कर लिया सिग्नल जो है, अब वही सिग्नल ऐसे मूव करके वापस से मसल्स के साथ कोई नर्व्स हो जो रिस्पॉन्ड करने का सिग्नल लेकर के जाते हैं, अगर ये आपस में जुड़े हुए हो तो ये काम कितना इजी हो जाएगा। फिर से सुनो, वो पार्ट बॉडी का, वो पार्ट जिसने नर्व सिग्नल को रिसीव किया है, गर्म है कोई चीज, इस सिग्नल को उसने रिसीव किया है, अब ये सिग्नल बजाय कि वो ब्रेन के पास ले जाए, कोई ऐसा रास्ता होता कि वो सिग्नल को वापस से मसल के पास दे पाता और मसल्स को दे पाता, यानी कि मसल से कोई नर्व जुड़ा हुआ हो जिसको रिस्पॉन्ड करने वाला नर्व हो, वो यानी कि मसल्स को मूव कराने वाला जो नर्व है, अगर उसी से डिटेक्ट करने वाला, हीट डिटेक्ट करने वाला नर्व जो है वो आपस में जुड़ जाए, तो वहां पर क्या होगा, अगर कोई गर्म चीज छू रहे हैं तो डिटेक्शन हो गया कि हाँ गर्म चीज है, उसके बाद अगर वो नर्व ऐसे नर्व से जुड़ा हो जो मसल को मूव कराता है, तो फटाफट से वो उस नर्व को सिग्नल भेज सकता है कि गर्म चीज है, मूव कराओ हाथ को। तो ये काम कितनी जल्दी हो जाएगा। तो सिग्नल को डिटेक्ट करना और उस पर रिस्पॉन्ड करना, वहां पर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना, ये प्रोसेस कितनी जल्दी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करवाने के लिए, ये जल्दी वाला प्रोसेस करवाने के लिए जो वहां पर बन रहा है नेटवर्क, उसी को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। सो व्हाट इज अ रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली एक नेटवर्क है जहां पर पहला तो डिटेक्शन करने वाला न्यूरॉन इन्वॉल्व है। उसने डिटेक्शन कर लिया, उसने सिग्नल रिसीव कर लिया। उसने सिग्नल रिसीव करने के बाद में वो ऐसे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है जो रिस्पॉन्ड करने वाला न्यूरॉन है, वो मसल्स को मूव कराने वाला न्यूरॉन है। तो यहाँ पर जो नेटवर्क बनी हुई है इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और रिफ्लेक्स आर्क की मदद से ही आप कोई काम जो है वो बहुत क्विकली कर पाते हैं। जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो बहुत क्विक होता है। अब बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स आर्क के जो कनेक्शन है वो कहाँ पर बनने चाहिए? तो रिफ्लेक्स आर्क के कनेक्शंस वहां बनने चाहिए जब इनपुट नर्व से जो सिग्नल आ रहा हो वो आउटपुट नर्व से जुड़ा हुआ हो। जहां पर भी पहले वो जुड़े, सबसे पहली बार जहां पर भी वो जुड़ रहे हो, जहां पर भी ये आपस में कनेक्शन इनका हो रहा है, वहीं पर रिफ्लेक्स आर्क का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, आपके पीछे गर्दन में एक बोन होती है जिसे स्पाइन कहते हैं। स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सिस्टम होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ही होकर के सारे जो नेटवर्क्स हैं वो गुजरते हैं, ब्रेन तक पहुंचते हैं। सो वी कैन से दैट नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। ये जो नर्व्स हैं ब्रेन तक जाते वक्त, जब ये ब्रेन तक जा रहे हैं उस वक्त ये स्पाइनल कॉर्ड से होकर के गुजरते हैं। सभी के सभी नेटवर्क्स, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर नेटवर्क्स हैं, अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, तो वो अलग अलग एक नेटवर्क बनाते हैं ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। और ये सभी के सभी नेटवर्क्स जो हैं ये आपस में जुड़े होते हैं जब ये स्पाइनल कॉर्ड से गुजर करके ब्रेन तक जा रहे होते हैं। तो वहां पर जो बंडल बना हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहां पर क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो नेटवर्क बना रहे हैं, वो सभी के सभी नेटवर्क जो है वो एक पॉइंट पर कनेक्टेड है। तो क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट यही है जहां पर अलग अलग नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, वो पॉइंट, वो वाला नेटवर्क भी कनेक्टेड है जो रिसीव करता है सिग्नल को, और वो वाला नेटवर्क भी कनेक्टेड है जो सेंड करता है सिग्नल को। तो ऐसे में रिफ्लेक्स आर्क कहां पर बनेगा? स्पाइनल कॉर्ड में बनेगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही वो जगह है जहां पर पहली बार दो अलग अलग नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। वो नेटवर्क भी कनेक्ट हो रहा है जो सिग्नल को लेकर के ब्रेन तक जाता है, और वो नेटवर्क भी कनेक्ट हो रहा है जो सिग्नल को ब्रेन से लेकर के जाता है मूव कराने के लिए, या फिर जो रिस्पॉन्स होना चाहिए उसका सिग्नल लेकर के जाता है। तो दोनों ही सिग्नल वाले जो नेटवर्क्स हैं वो जुड़े हुए हैं कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से गुजर करके ये ब्रेन तक जा रहे थे, लेकिन वो पॉइंट जहां पर पहली बार ये जुड़े हुए हैं वो पॉइंट क्या है? वो स्पाइनल कॉर्ड है। और हमने बात की हुई है कि रिफ्लेक्स आर्क कब बनता है? जब एक डिटेक्शन वाला सिग्नल जो है वो जो नर्व लेकर के आ रहा है, वो नर्व या फिर वो नेटवर्क, उस नर्व का नेटवर्क जो डिटेक्शन वाला, यानी कि जो उसके पास सिग्नल है कि मैंने कोई चीज डिटेक्ट की है, उसका सिग्नल लेकर के जा रहा हो, और एक और नेटवर्क वो होगा जो रिस्पॉन्ड करने वाला सिग्नल लेकर के जाता है। जब ये दोनों आपस में न्यूरॉन्स जुड़ जाएंगे, ये नेटवर्क जुड़ जाएंगे, तो बहुत जल्दी से हो जाएगा जो डिटेक्शन है, उसके बाद अकॉर्डिंगली फटाफट से उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि पॉइंट जहां पर पहली बार ये जुड़ रहे हैं उसी को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क कहाँ पर बनेंगे? स्पाइनल कॉर्ड में बनेंगे, क्योंकि पहली बार जो अलग अलग नेटवर्क्स है आपस में कहाँ पर जुड़े हुए होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जो रिफ्लेक्शन आर्क है उसका फॉर्मेशन भी स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही सिग्नल को रिसीव करने वाला नेटवर्क और सिग्नल को रिस्पॉन्ड, मतलब रिस्पॉन्ड करने वाला सिग्नल भी आपस में नेटवर्क्स जो अलग अलग है वो जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए रिफ्लेक्स आर्क जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। एक बार और सुन लो, रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बनता है? रिफ्लेक्स आर्क वहां बनता है जहां पर दो तरीके के नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हों। वो न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, वो नेटवर्क कंप्लीट भी हो सकता है। तो दो तरीके के नेटवर्क्स आपस में जुड़े होने चाहिए। कौन कौन से नेटवर्क? एक नेटवर्क तो वो हो जिसने सिग्नल रिसीव किया है, जैसे मान लो थर्मोरिसेप्टर है, तो थर्मोरिसेप्टर के न्यूरॉन्स ने सिग्नल रिसीव किया कि बाहर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत गर्म है, तो वो रिसीव करने वाला सिग्नल जो है वो उस नेटवर्क में जाएगा जो रिसीव करने वाले सिग्नल्स को लेकर के जाता है। अब ये नेटवर्क कनेक्टेड होना चाहिए उस नेटवर्क से जो रिस्पॉन्ड करने वाला सिग्नल लेकर के जाता है, और ये नेटवर्क कहाँ पर बन पाता है, कंप्लीट नेटवर्क कहाँ पर बन पाता है, जहां पर ये आपस में जुड़े हो, और ये कहाँ पर आपस में जुड़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ते हैं, इसीलिए रिफ्लेक्स आर्क जो बनता है वो स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्नल ब्रेन में नहीं जाता, सिग्नल ब्रेन में जाता है, लेकिन उसके पहले ही जहां पर ये आपस में जुड़े होते हैं वो कहाँ है, वो स्पाइनल कॉर्ड में है। तो रिफ्लेक्स आर्क का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो रिफ्लेक्स आर्क का फॉर्मेशन करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि देखो ब्रेन में तो सिग्नल अल्टीमेटली जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके पहले अगर थिंकिंग के प्रोसेस में टाइम लगाते रहते तो हाथ जल सकता है उतने में जितने में हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसीलिए रिफ्लेक्स आर्क बनाया गया कि ऐसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से एक्शन करने की जरूरत है ताकि बॉडी को बचाया जा सके फ्रॉम द इमीडिएट डेंजर, इमरजेंसी सिचुएशन से बॉडी को बचाया जा सके। सो वी कैन से दैट रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्वड, रिफ्लेक्स आर्क बने हैं, उनका इवोल्यूशन इसलिए हुआ है बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। थिंकिंग प्रोसेस जो ब्रेन का है वो इतना क्विक नहीं होता है, इसीलिए रिफ्लेक्स आर्क्स बनाने की आवश्यकता पड़ी एनिमल्स की बॉडी के अंदर। और कुछ कुछ जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें तो जरूरत भी नहीं होती थिंकिंग प्रोसेस के लिए न्यूरॉन्स बनाने की, केवल हायर एनिमल्स में होते हैं थिंकिंग के न्यूरॉन्स। जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें थिंकिंग कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिज्म है, तो इसलिए उनके अंदर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म करवाने के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उनमें थिंकिंग की प्रोसेस भी नहीं होती। तो ऐसे में और ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है रिफ्लेक्स आर्क्स की, क्योंकि छोटे ऑर्गेनिजम्स, छोटे एनिमल्स जो है उनमें थिंकिंग की प्रोसेस ही नहीं होती, तो उनको रिफ्लेक्स आर्क से ही काम चलाना पड़ता है, इमीडिएट डेंजर कोई आ जाए उससे खुद को बचाने के लिए उनके अंदर रिफ्लेक्स आर्क्स ही फंक्शन करते हैं। हम देखते हैं कि हायर ऑर्गेनिजम्स में थिंकिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हायर ऑर्गेनिजम्स में भी रिफ्लेक्स आर्क्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो बहुत एफिशिएंट है, क्विकली हमारी हेल्प करता है ऐसी सिचुएशंस में जब डेंजर बहुत तुरंत होने का खतरा हो, और उससे क्विक रिस्पॉन्स होने में हमारे रिफ्लेक्स आर्क्स मदद करते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर पेज नंबर 117 पर देख सकते हैं, आप लोगों को एक रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बताया गया है। ये डायग्राम भी, इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे क्योंकि ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। डायग्राम्स जितने भी होते हैं वो सभी आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो पेज नंबर 117 पर फिगर 7.2 में आप लोगों को रिफ्लेक्स आर्क दिखाया गया है। ये वही है जो हमने अभी शब्दों में बताया आप लोगों को, हमने जो बात की है वही है, बस डायग्राम में आप लोगों को बताया गया है। तो इसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि मान लीजिए कोई गर्म चीज़ हम छूते हैं या फिर पेन है, तो वो रिसेप्टर के रूप में होता है, और रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे स्किन में होते हैं। तो रिसेप्टर्स जो है वो मूव कर रहे हैं एक नेटवर्क से, नेटवर्क किससे बना है, न्यूरॉन से, नर्व सेल से बना है, और ये सेंसरी न्यूरॉन से बना है। सेंसरी मतलब सेंस करने वाले, ऐसे न्यूरॉन्स जो बदलाव को महसूस कर पाते हैं, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उसे महसूस कर पाते हैं, तो सेंसरी हैं ये, सेंस कर पाते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, सिग्नल लेकर के जाते हैं पेन का, या फिर हॉट है कोई चीज़ उसकी हीट का सिग्नल लेकर के जाते हैं। उसके बाद ये जाकर के कहाँ मिल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिल रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन जो लिखा हुआ है, रिले न्यूरॉन क्या है, रिले न्यूरॉन एक न्यूरॉन है जो कि कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, यानी कि वो न्यूरॉन्स का नेटवर्क जो सेंसरी सिग्नल लेकर के जा रहे थे, डिटेक्ट करने वाला सिग्नल लेकर के जा रहे थे, इसको जोड़ता है उस नेटवर्क से जो रिस्पॉन्ड करने वाला सिग्नल लेकर के जा रहा था, तो उसे क्या कहते हैं, उसे रिले न्यूरॉन कहते हैं। ये भी एक न्यूरॉन ही है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन बेसिकली जंक्शन बनाने का है, जोड़ बनाने का है बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन का नेटवर्क एंड मोटर न्यूरॉन का नेटवर्क। मोटर न्यूरॉन कुछ अलग से चीज़ नहीं है, मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली वो न्यूरॉन है जो रिस्पॉन्ड करने वाला सिग्नल लेकर के आया है, और मोटर न्यूरॉन जुड़ा होता है मसल सेल से, क्योंकि जो रिस्पॉन्ड करने वाला सिग्नल है वो कहाँ लेकर के आना है, मसल्स के पास में लेकर के आना है ताकि मसल्स मूव करें। तो मोटर न्यूरॉन बेसिकली क्या है, वो न्यूरॉन है जो मसल से जुड़ा हुआ है और रिस्पॉन्ड करने वाला सिग्नल लेकर के आ रहा है। उसके बाद जहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहा है वो मसल कर रहा है, और इसीलिए इफेक्टर मसल इन दी आर्म, उसे इफेक्टर कह रहे हैं मसल को, क्योंकि वहां पर इफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, और आप लोगों को डायग्राम भी अच्छे से आना चाहिए, आपसे बोला जा सकता है बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमें पढ़ना है अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन सबसे इंटरेस्टिंग ऑर्गन है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर में, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को संभालना, जो भी प्रोसेस सारे चल रहे हैं वो सभी के सभी ह्यूमन ब्रेन की मदद से, उसी की वजह से चल रहे हैं। आपका बहुत सारा आप एक्शन जो करते हैं वो आपके कंट्रोल में होता है, सच एज आप वॉक कर रहे हैं आपके कंट्रोल में है, आप कुछ लिख रहे हैं आपके कंट्रोल में, आप कुछ खा रहे हैं आपके कंट्रोल में। बाकी बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, आपके खाने का डाइजेशन हो रहा है, उसके बाद एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, किडनीज के अंदर में फिल्ट्रेट बन रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सभी के सभी प्रोसेसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, तब भी प्रोसेसेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ब्रेन के कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में भले ही नहीं है, लेकिन ब्रेन जो है वो इन सभी प्रोसेसेस को करवाता है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो अलाइव रहे, फंक्शनिंग रहे, हेल्दी रहे। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन, जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को एक तरीके से पूरा मेंटेन करता है। बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रेन ही होता है। अल्टीमेटली आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, आप ग्रो हो करके अडल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अडल्ट होने के बाद रिप्रोडक्शन के टाइम पर आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो सभी ब्रेन का काम है। तो ब्रेन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड जो है बेसिकली उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स एक बंडल का फॉर्मेशन करते हैं और वहां पर रिफ्लेक्स आर्क का फॉर्मेशन आसानी से हो पाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो क्या स्पाइनल कॉर्ड का केवल यही फंक्शन है रिफ्लेक्स आर्क बनाने का? नहीं, केवल यही फंक्शन नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड का ये भी फंक्शन है कि अलग अलग नेटवर्क से, न्यूरॉन्स के अलग अलग नेटवर्क से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो रिसीव किए जा रहे हैं सिग्नल्स, उनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम भी स्पाइनल कॉर्ड का ही है। स्पाइनल कॉर्ड से होकर के ही ये सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो थिंकिंग बींग्स है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो सोच सकते हैं, समझने की शक्ति रखते हैं, बातों को परखने की, जो भी आसपास चीजें हो रही हैं ना केवल उसे देख रहे हैं बल्कि उसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके साथ क्या करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या हरकत करनी चाहिए, इस परिस्थिति में हमें क्या काम करना चाहिए। तो ह्यूमन बींग्स ना केवल चीजें देखते हैं बल्कि समझते भी हैं। तो ह्यूमन बींग्स आर थिंकिंग बींग्स। तो थिंकिंग करने के लिए जो सिग्नल्स है वो ब्रेन तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि थिंकिंग का प्रोसेस जो होता है वो ब्रेन में होता है, और सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से ही सारे के सारे नेटवर्क्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से गुजर करके कहाँ पहुंचते हैं? ब्रेन तक पहुंचते हैं। थिंकिंग कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अगर किसी बॉडी के अंदर हो रहा है तो उस मैकेनिज्म को करवाने के लिए जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, जो काम करवाने वाला ऑर्गन होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स होगा, वो भी बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से बना हुआ होगा। तो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को करवाने के लिए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनता है, और वो कनेक्शन बना करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्रेन में, जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन यानी कि थिंकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कनेक्शंस हैं, ये कहाँ होते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर में भी। वो थिंकिंग का जो पार्ट है वो कौन सा है? फोर हेड वाला पार्ट है, जो फोर फ्रंट है यानी कि फ्रंटल पार्ट जो है वो थिंकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो क्योंकि सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन कौन है? हमारा ब्रेन है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया का सेंटर क्या है? दिल्ली है। इस तरीके से हर एक स्टेट का अलग अलग सेंटर होता है। सेंटर बेसिकली क्या होता है? सेंटर बेसिकली वो पार्ट है जहां से पूरी जगह को कंट्रोल किया जा रहा है। दिल्ली से ही सारे फैसले लिए जाते हैं पूरे देश के लिए। इसी तरीके से ब्रेन जो है वो क्या है? बॉडी के जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ब्रेन से हो रहे हैं। तो ब्रेन जो है वो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग पार्ट है हमारी बॉडी का, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, यहीं पर कोऑर्डिनेशन सारी हो रही है। तो इसीलिए ब्रेन को हम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी कहते हैं। और क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? इंफॉर्मेशन को लेकर के आना, ब्रेन तक पहुंचाना। ब्रेन का काम है थिंकिंग करना और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना। तो यहाँ पर दो ऑर्गन्स मेनली इन्वॉल्व हैं, वो कौन कौन से हैं? स्पाइनल कॉर्ड है और हमारा ब्रेन है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को मिला करके हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सिस्टम बनता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को मिला करके, इन्हें जोड़ करके, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही इंफॉर्मेशन पहुंचती है, कोई भी सिग्नल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस सिग्नल को डिटेक्ट करता है, रिस्पॉन्स को सोचता है, समझता है, उसके बाद रिस्पॉन्ड भी करता है अकॉर्डिंगली। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ह्यूमन ब्रेन, तो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर सबसे फैसिनेटिंग ऑर्गन, सबसे ज्यादा दिलचस्प ऑर्गन जो है वो ह्यूमन ब्रेन है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो इंटरेस्ट है ह्यूमन ब्रेन के लिए वो बनाए रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने जो आज की क्लास में पढ़ा है उसे रिवाइज जरूर कर लीजिए। कहीं पर भी कोई भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो अपने टीचर से जरूर पूछिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।